अक्षय और हाना के कमरे में माहौल थोड़ा अजीब सा था। शाम को हुई बहस के बाद से ही अक्षय कुछ मायूस, विचलित और दुखी लग रहा था। आहाना ने उससे बात करना चाहा, पर मौका नहीं मिला। जब वो अपने सारे काम करके कमरे में आई तो अक्षय अकेला परेशान सा बालकनी में खड़ा था। आहाना ने अपने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हुई और फिर बालकनी की ओर कदम बढ़ा दिए। अक्षय जी, आप इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर घुटन सी हो रही थी तो बाहर आ गया। आप जाकर सो जाइए, मैं कुछ देर यहीं रहूंगा। अक्षय ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। उसकी निगाहें सामने की ओर शून्य में टिकी रहीं। आहाना कुछ पल उसके बगल में खड़ी रही और खामोशी से उसके चेहरे का मुआयना करती रही। फिर रेलिंग पर रखी उसकी हथेली पर अपनी हथेली रखते हुए गहरी निगाहों से उसे देखते हुए संजीदगी से पूछा, क्या हुआ आपको, परेशान लग रहे हैं? अक्षय ने आहाना के सवाल पर एक बार फिर सामने देखते हुए सिर हिलाकर इनकार किया। परेशान नहीं हूँ, बस कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं, हमें नहीं बताएंगे? अक्षय ने ठंडी आह भरी और अब कहीं जाकर उसकी निगाहें आहाना के चेहरे पर पड़ी। सोच रहा हूँ कि आपने मुझे अपने लिए क्यों चुना, मुझसे शादी करके क्या मिल गया आपको? आप क्यों इतने सालों से खामोशी से सब सहती आ रही हैं? क्यों कभी कोई शिकायत नहीं करती आप? और भी बहुत से क्यों हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे मुझे। अक्षय के सवाल सुनकर आहाना के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आज वो कुछ अलग लग रहा था। इतना निराश, नाउम्मीद, उदास, खुद से खफा वो पहले कभी नहीं लगा था, इसलिए आहाना कुछ परेशान हो गई थी। आप आज अचानक ये कैसी बातें सोचने लगे? विचलित निगाहों से उसे देखते हुए आहाना ने चिंतित स्वर में सवाल किया और आंखें बड़ी बड़ी किए उलझन भरी निगाहों से उसे देखने लगी। अक्षय ने आहाना की हथेली के नीचे से अपनी हथेली खींचते हुए निराशा भरे स्वर में जवाब दिया, अचानक नहीं, पहले कई बार ये सवाल खुद से कर चुका हूँ कि आपसे शादी करके सिवाय दुख, दर्द, मुश्किलों, स्ट्रगल, समझौतों के मैंने क्या दिया है आपको? पति होते हुए मैं कभी ठीक से आपके हक के लिए खड़ा नहीं हो सका, चाहकर भी आपको एक बेहतर माहौल, घर में इज्जत और प्यार नहीं दिला सका। आपको हमेशा समझाता रहा पर कभी अपनी माँ को आपका पक्ष नहीं समझा सका। अन्वय को जब हर परिस्थिति में अंतरा के साथ खड़ा देखता हूँ तो खुद को आपसे नज़रें मिलाने का काबिल नहीं पाता मैं। शायद आपको भी ऐसे ही लाइफ पार्टनर की चाहत रही होगी, जो हर परिस्थिति में आपकी हिम्मत बनकर आपके साथ खड़ा रह सके, जो आपके लिए सबसे लड़ने की काबिलियत रखता हो। अक्षय ने इतना ही कहा था कि आहाना ने एक बार फिर उसकी हथेली को थाम लिया, जिससे अक्षय बोलते बोलते रुक गया। पहले उसने अपनी हथेली को देखा, फिर सवालिया निगाहें आहाना की ओर घुमाई। आहाना उसकी हथेली पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए हौले से मुस्कुराती, गलत सोच रहे हैं आप, हमें कैसे जीवन साथी की ख्वाहिश थी ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और हमारे मन में बनी उस छवि पर आप बिल्कुल खरे उतरे हैं। हर बार भले आपने हमारा साथ नहीं दिया, पर जब हमें सबसे ज्यादा आपके साथ की जरूरत थी, हमने हमेशा आपको अपनी हिम्मत बनकर अपने पास खड़ा पाया है। बहुत सी जगहों पर आपने मम्मी जी का साथ दिया जिसे हमें बुरा भी लगता था, पर उसके लिए हम आपसे नाराज नहीं, क्योंकि उनसे कहीं ज्यादा बार आप हमारी ढाल बनकर उनके सामने खड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि आप मम्मी जी से बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए आपके लिए उनके खिलाफ जाना आसान नहीं होता। फिर भी आपने बहुत बार हमारे लिए उनका विरोध किया है। अन्वय और आपके स्वभाव में बहुत अंतर है, इसलिए खुद को उनसे कंपेयर मत कीजिए। हमारे लिए आप एक बेहतर जीवन साथी साबित हुए हैं। आपने तो तब हमें संभाला है जब हमने बिल्कुल जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जो आपने हमारे लिए किया है शायद कोई और नहीं कर पाता, इसलिए खुद को किसी से कम आंकने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आहाना ने बहुत ही प्यार से उसे समझाया था और उसके मन में जो हीन भावना और आत्मग्लानी के भाव पनपने लगे थे उन्हें मिटाने की कोशिश भी की थी। दुख के बादल कुछ छटे जरूर थे, पर अक्षय अब भी कुछ परेशान लग रहा था। निगाहें आहाना पर टिकी थीं, पर ध्यान कहीं और ही गुम था। अब क्या सोचने लगे आप? आहाना की आवाज़ अक्षय के कानों में पड़ी और वो जैसे गहरी नींद से जागा। ख्यालों से बाहर आते ही ध्यान आहाना पर गया, जो अपनी तितली जैसी पलकों को फड़फड़ाते हुए आंखों की पुतलियां फैलाए परेशान से उसे ही देख रही थी। सोच रहा हूँ शायद अब वक्त आ गया है कि पापा की बात मानकर आपको लेकर इस घर से चला जाऊं, अक्षय ने बेहद गंभीरता से कहा। पहले तो आहाना उसकी बात सुनकर चौंक गई, फिर तुरंत ही सिर हिलाकर इनकार कर दिया, नहीं, हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अपनी माँ बाप और परिवार से बिछड़कर जो दुख पापा ने सहा वो हम आपके हिस्से नहीं आने दे सकते। हम जानते हैं कि आपका परिवार आपके लिए कितना मायने रखता है। उनके बिना न तो आपका कोई अस्तित्व है और ना ही खुशी। अगर हमारे कारण आपने अपना घर परिवार छोड़ दिया तो आप हमारे साथ रहकर भी कभी दिल से खुश नहीं हो सकेंगे। ये पछतावा उम्र भर के लिए आपके मन में एक टीस बनकर चुभेगा कि हमारे कारण आप अपने मम्मी पापा भाई बहन सबसे दूर हो गए। हम भी खुद को कभी इस बोझ से आजाद नहीं कर सकेंगे कि हमने अपने सुखी जीवन के लिए एक परिवार को तोड़कर रख दिया, एक माँ बाप से उनके बेटे को, एक भाई से उसके भाई को अलग कर दिया, और पापा जी, अन्वय, अंतरा सबसे दूर जाकर हम कैसे खुश रह सकेंगे। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी अब तो हालात पहले से बहुत सुधर गए हैं। अंतरा मम्मी जी को संभाल लेती है, अब वो भी पहले जैसे हमारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं पैदा करती, बस बातें ही तो सुनाती हैं। सुन लेंगे थोड़ी बातें। अहाना के जवाब ने अक्षय को निशब्द कर दिया। वो समझ ही नहीं सका कि अब क्या कहे। अहाना के इस इनकार के बाद उस बारे में कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं रह गया था। पर रोज रोज की चिक चिक अपनी माँ के रूखे व्यवहार से भी वो बहुत परेशान हो चुका था। इन सब से बाहर निकलने का, सब ठीक करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था उसे। पहले तो अपनी अकड़ दिखाते हुए रूपाली जी भूखी ही लेट गई, पर एक पल को भी नींद नहीं आ सकी। रात के 1 बजे भूख से बिलबिलाती हुई वो दबे पांव रसोई में पहुंची। फ्रिज में वो खाना ढूंढ ही रही थी कि एक प्लेट उनके सामने आ गई और साथ ही अभिजीत जी की आवाज भी आई। लीजिए, आपकी बहू ने आपके लिए निकालकर अलग रख दिया था ताकि भूख लगने पर आप खा सकें। चोरी पकड़े जाने पर रूपाली जी के चेहरे का रंग उड़ गया था। मन तो किया कि दौड़कर वापस कमरे में घुस जाएं, पर पापी पेट ने आज उन्हें जलील करवाने की पूरी योजना बनाई हुई थी। भूख के आगे मजबूर उन्हें ना चाहते हुए भी प्लेट पकड़नी पड़ी। भगवान को शुक्र मनाइए रूपाली जी, जो आपको इतनी अच्छी बहुएं दी हैं। आपने उनकी दुर्गति कर रखी है, फिर भी उन्हें आपका ख्याल रहता है। नसीब वालों को ऐसी बहुएं मिलती हैं, वरना आप जैसी सास को तो बहू पूछती तक नहीं और शादी के दूसरे दिन ही पति को लेकर अलग हो जाती है। और एक आपकी बहुएं हैं जो आपकी हर ज्यादती और अत्याचार सहकर भी इतना सोचती हैं आपके बारे में। अभिजीत जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उनकी बातें सुनकर रूपाली जी खींच उठी और चिढ़ते हुए बोली, आपके प्रवचन नहीं सुनने हमें, जाइए यहाँ से और हमें चैन से खाना खाने दीजिए। अभिजीत जी ने बेबसी और अफसोस से सिर हिलाकर इनकार किया, जैसे कह रहे हों कि इनका कुछ नहीं होगा, और वहां से चले गए। रूपाली जी कुछ पल उस प्लेट को घूरती रहीं, फिर खाना वहीं रसोई में खाने बैठ गईं।